Future Hacker. Life. Path. Future.
Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.
Hello everyone. आज हम अपने फ्यूचर हैकर की पॉडकास्ट शुरू कर रहे हैं. दिस इज द फर्स्ट पॉडकास्ट जो इंटरनेशनल है और हमारी हिंदी और उर्दू लैंग्वेज में है. सो इट्स वेरी एक्साइटिंग टाइम फॉर अस फ्यूचर हैकर पूरी हमारी टीम के लिए. तो मैं आपको तारुफ कराता हूँ आज के अपने गेस्ट का. आज हमारे गेस्ट हैं नितेश जैन, फाउंडर और CEO बी सिंगुलर अकेडमी के, इंडिया में बोर्ड मेंबर हैं हार्वर्ड एलुमिनाई एंटरप्रेन्योर ग्रुप के, एम्बेसडर हैं सिंगुलैरिटी यूनिवर्सिटी के न्यू दिल्ली में, इसके अलावा फाउंडर हैं अशोका यूनिवर्सिटी और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बेस्ट ग्रुप. ये इतना बड़ा इंट्रोडक्शन है, तो आइए लेट्स जस्ट राइट गेट इनटू इट और आपको मिलवाते हैं अपने मेहमान से, नितेश से. सो हियर वी गो. नितेश, आपका सफर पूरा, आपका पूरा करियर अब तक, इट हैज बीन फैसिनेटिंग. कुछ आप बताएंगे इसके बारे में, कहाँ आपने शुरू किया, कैसे आपको ख्याल आया और फिर एजुकेशन खास तौर पे आपने क्यों चुना कि एजुकेशन में काम करें आप, प्लीज.
हाँ, तो मेरी जर्नी एक छोटे से टाउन से शुरू हुई थी इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में बेस्ड है, और शुरू से ही मैं हमेशा कुछ अलग सा करना चाहता था. मैं हमेशा ये देखता रहता था कि कैसे चीज़ें बन रही हैं, कैसे इवॉल्व हो रही हैं, क्या इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन पता नहीं था कि करना कैसे है. तो मैं अपने फैमिली बिजनेस में आया जो कि मैन्युफैक्चरिंग और हाई टेक्नोलॉजी एरियाज में है, लेकिन मेरे मन में कहीं था कि मुझे एजुकेशन में कुछ करना है, क्योंकि मैं जब भी आसपास देखता था यही देखता था कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे फैमिलीज एजुकेशन को बहुत महत्व देते हैं, मगर अच्छी एजुकेशन पाना बहुत मुश्किल है हर एक आदमी के लिए. तो मेरा जो पहला एजुकेशन में कदम था वो मेरे पर्सनल प्रॉब्लम से शुरू हुआ, जब मेरी पहली पुत्री पैदा हुई. और उस समय मैंने देखा कि जब हम उसके बेसिक एजुकेशन के लिए, उसके प्री स्कूल के लिए, या जब उसकी मदर को कुछ काम करना था, उसको छोड़ना था, तो हमें लगा कि भाई ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा. हमारे देश में जहाँ विमेन एंटरप्रेन्योरशिप की बात होती है, विमेन को आगे आना चाहिए उसकी बात होती है, उसके लिए बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, लेकिन विमेन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं हो रहा था. जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर एक घर की स्त्री काम करना चाहती है तो अपने छोटे बच्चे को कहाँ छोड़े, जहाँ पे एनवायरनमेंट सिक्योर हो, उसको खाने पीने के लिए अच्छी चीज़ मिले और साथ साथ ज्ञान प्राप्ति भी हो, तो ये कुछ था ही नहीं. तो हम लोगों ने इंडिया की पहली डे केयर चेन शुरू करी, जहाँ बच्चों को सुविधा मिलती है, पूरा एजुकेशन मिलता है और पूरा खान पान का ध्यान रखा जाता है, जैसी उनकी ज़रूरत है वैसा. और वहाँ से एजुकेशन का हमारा एक फर्स्ट स्टेप शुरू हुआ. उसके बाद दूसरा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था मेरी लाइफ में, जब मैंने देखा कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस में हमारे एचआर के लोग आके हमेशा ये बोलते थे कि जी जिसे इंटरव्यू करते हैं उसे जो काम करना है उसके बारे में तो पता ही नहीं है. तो हमें बहुत रिसोर्सेज, बहुत स्किल्स और एजुकेशन अपनी कंपनीज में देना पड़ता है, इससे पहले कि एक व्यक्ति कुछ योगदान कर पाए हमारे व्यापार में. तो वहाँ से मुझे ये महसूस हुआ कि जितने यंगस्टर्स हैं उनकी गलती नहीं है, वो जिस एजुकेशन सिस्टम से निकल रहे हैं, पूरा फीस दे रहे हैं, उनको उस बारे में और उनको जो चीज़ चाहिए वो मिल ही नहीं रही, क्योंकि उन्हें 20, 25, 30, 50 साल पुराना एक सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है जिसकी आज की दुनिया में महत्वता ही नहीं है. तो वहाँ से मुझे ये समझ में आया कि अगर हमें कुछ चेंज करना है तो बिल्कुल ग्रास रूट पे करना पड़ेगा. फिर मैं सिंगुलैरिटी यूनिवर्सिटी से अटैच हुआ और वहाँ मैंने ये पाया कि हमें जो चीज़ हम अब आके सीख रहे हैं, ये टेक्नोलॉजीज दुनिया भर में हर एरिया में बहुत सारे चेंजेस लाएगी और बहुत तेज़ी से लाएगी, और हमारा यंग जनरेशन जो है वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड ही नहीं है उन टेक्नोलॉजीज को हैंडल करने के लिए, समझने के लिए और कुछ योगदान करने के लिए. उस समय बी सिंगुलर का जन्म हुआ और उस समय हमने अपना एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव बनाया जिसको हम बोलते हैं मैसिव ट्रांसफॉर्मेटिव पर्पस, कि हम क्या ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं अपने इस स्फीयर के अंदर में हमने उसमें बनाया कि हम अपना विजन क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम टेक्निकल एजुकेशन को सरलता से और हर एज के बच्चे के लिए जब जहाँ वो समझ पाए उस एजुकेशन को उस तक पहुँचाएंगे ताकि वो बच्चा कुछ योगदान कर पाए इस सोसाइटी में और हमारी ह्यूमैनिटी में। तो यहाँ से हमारा एक दूसरा सफ़र शुरू है एजुकेशन के लिए और बी सिंगलर का ऑब्जेक्टिव यही है जो मैंने आपसे बताया, और मैं विश्वास रखता हूँ कि हमारी टीम अच्छा एक योगदान दे पाएगी इस एरिया में जहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं।
बहुत बढ़िया, एक्सलेंट। एक सवाल इससे मैं जोड़ूंगा अगर नितेश, आपके ख्याल में ये जो बी सिंगुलर है इसको आप सिर्फ अब इंडिया तक रखेंगे या आप इसको सोचते हैं कि पूरे रीजन में लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा पूरा ये रीजन ही उस तरह से पीछे है अगर हम कंपेयर करें दूसरे बाहर के मुल्कों से, अमेरिका से। और तो आपका क्या इरादा है, इसको लेके जाएंगे आप सब जगह पे?
जी बिल्कुल, एक्चुअली बी सिंगुलर के दो मॉडल हैं, फिजिकल और ऑनलाइन एजुकेशन। और फिजिकल हम एटलीस्ट इंडिया में अभी स्कूल्स के लैब्स को टेक ओवर करेंगे धीरे धीरे करके, जहाँ पे बी सिंगुलर क्लब्स चलाए जाएंगे और जहाँ पे बी सिंगुलर करिकुलम पढ़ाया जाएगा स्कूल के साथ मिलके, जहाँ पे स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम यूज कर पाएंगे और स्कूल के टाइम टेबल और स्कूल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बी सिंगुलर क्लब्स को चला पाएंगे। वो मोस्टली इन स्कूल और आफ्टर स्कूल होंगे। लेकिन जहाँ तक आपने सवाल पूछा कि क्या ये इंडिया तक ही सीमित है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बी सिंगुलर का ऑनलाइन मॉडल है वो पूरे विश्व के लिए है, और हम ऑलरेडी इस समय करीबन 7 कंट्रीज के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं, अमेरिका, ब्राज़ील, मेक्सिको, मलेशिया, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, दुबई में से बहुत इंक्वायरी आई हैं। तो जहाँ जहाँ बी सिंगुलर का लोगों को पता चल रहा है वो हमें टच बेस करते हैं, हमें लिखते हैं, और हमारे ट्रेनर्स जो हैं वो उनको उनके टाइम प्लान के हिसाब से जहाँ जिस देश में वो हैं उसके टाइम जोन के हिसाब से कन्वीनियंट टाइम आपस में हम लोग तय करते हैं और उन बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हैं, और ये हम आगे भी ले जाएंगे। हमारा अक्टूबर में प्लान है बी सिंगुलर जर्मनी शुरू करने का, क्योंकि यूरोपियन मार्केट बहुत बड़ी है और वहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे और धीरे धीरे करके हम अलग अलग देशों में जाएंगे, और वहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ पार्टनरशिप्स के लिए भी ओपन है, क्योंकि बी सिंगुलर का करिकुलम बहुत यूनिक है। हमारी टीम ने इंटरनली पूरा करिकुलम डेवलप किया है और हमें लगता है कि ये करिकुलम ऐसा है कि हर कंट्री में सिमिलर चीज़ की रिक्वायरमेंट है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो यंग जनरेशन है वो इस एजुकेशन को अडॉप्ट करना चाहती है, इसलिए हम उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं।
नितेश, आप बहुत कम लोगों में जो खुद से चीज़ों को हाथ में लेते हैं और फिर आगे बढ़ के कुछ काम करते हैं और चीज़ों को बेहतर करते हैं, और आपकी ये मिसाल है पूरा आपका जर्नी, आपका करियर, तो बहुत आपने खुद से इनिशिएटिव लिया। आपके ख्याल में जो डेवलपिंग अभी जो जो, 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 जो रीजन है दुनिया के, वहाँ पे अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। लिटरेसी का चैलेंज है एक बहुत बड़ा, बेसिक हेल्थ केयर का भी एक, सेहत का बहुत बड़ा चैलेंज है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक चैलेंज है। फिर अगर हम मवाजना उसको कंपेयर कर लें तो ब्राज़ील में भी इस तरह के चैलेंजेस हैं। तो आप कैसे देखते हैं कि क्या सरकार कर सकती है और क्या आम लोग और प्राइवेट सेक्टर कर सकता है इन चैलेंजेस को निपटने के लिए, इनसे बेहतर तौर पर लड़ने के लिए, टैकल करने के?
जी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, और मैं ये कहना चाहूँगा कि बेसिकली समझ में ही गैप है। अगर आप कंट्री डिफरेंट कंट्रीज की गवर्नमेंट्स को देखें, कम्युनिटीज को देखें, सब लोग जो है बेसिक चीज़ों को समझने में उनका जो गैप है वो अलग अलग किस्म से देखते हैं हर चीज़ को। अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पे करीबन 1.2 बिलियन से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, और इतना बड़ा नंबर होते हुए एजुकेशन को प्रॉपर तरीके से हर जगह पहुंचाना बहुत ही एक चैलेंजिंग टास्क है, इजी नहीं है किसी भी सरकार के लिए। और कोविड के आते ये गैप जो है वो बहुत बढ़ गया। पहले भी एक डिजिटल डिवाइड जिसको हम कहते हैं वो गैप था, जिसमें सिटी या अर्बन एरियाज में जो लोग रहते हैं उनको एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फिर भी अच्छा मिलता है, लेकिन गाँव में और अलग अलग प्रांतों में वो प्रॉब्लम उतनी आसानी से सॉल्व नहीं हो पाती है। तो अब चैलेंज ये है कि अगर हमें अपनी पॉपुलेशन को, यंग जनरेशन को पढ़ाना लिखाना है तो उसके लिए क्या करा जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, लेकिन अगर वो टेक्नोलॉजीज पहुंचेंगी ही नहीं उन लोगों तक के जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है, तो वो यूज़ ही नहीं हो पाएगी। अब एक गांव में एक फैमिली के पास में मोबाइल कनेक्शन अवश्य होगा, लेकिन वो डेटा पैक कितना रखता है, जितना उसकी फैमिली के लिए ज़रूरतमंद हो उतना रख लेगा। अगर हमें वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हर बंदे को, हर इंसान को पहुंचानी है, तो उसके लिए ऑनलाइन और इंटरनेट के जरिए पहुंचाना सबसे आसान काम है। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो नहीं पहुंच पाएगा। तो मैं मानता हूं कि कुछ ऐसे चीज़ें सरकार कर सकती हैं, भले वो ब्राज़ील हो, भले वो इंडिया हो, जहाँ पे अभी भी पॉपुलेशन इलिटरेट है और जिनको इलिटरेट बनाना है वो यूथ बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में थोड़ा बहुत अगर सरकार कर दे, जैसे एक एग्जाम्पल है कि बच्चों के लिए जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनके नाम पे इंटरनेट प्लान की सब्सिडी कर दें या चार्जेस को वे ऑफ कर दें। बहुत सारे देश हैं जिनमें ऐसा हुआ है, अफ्रीका में बहुत सारे देश हैं जिनमें वे ऑफ कर दिया गया इंटरनेट चार्जेस को। एजुकेशन को टीवी के जरिए पहुंचाया जाए, हमारे जैसे बहुत सारे बी सिंगलर जैसे बहुत सारे और भी कंपनीज हैं जो अपने करिकुलम को पहुंचाना चाहते हैं इन जनता के पास में, इन लोगों के पास तक के, ताकि वो जो पढ़ें और जो एक सिटी या अर्बन एरिया का बच्चा पढ़ता है उसमें कोई फर्क ना रहे। क्योंकि हर एक यंग जनरेशन जो छोटे शहर से आती है उनका एस्पिरेशन भी सेम ही है, उनका एस्पिरेशन कोई अलग नहीं है। तो इसलिए कुछ ऐसे कदम अगर उठाए जाएं तो उससे बहुत फायदा होगा। अभी कोविड में बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं जिनके पास में लैपटॉप ही नहीं थे, स्मार्टफोन नहीं था। गवर्नमेंट अगर सिर्फ इतना सा करती कि आपको एक स्मार्टफोन लेने में, अगर वो कोई टाई अप कर लेते सैमसंग या ऐसी कंपनी के साथ में और बोलते कि भाई आप इनको सब्सिडाइज कर दीजिए, कुछ स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर देगी, तो उससे फायदा हो जाता। तो ये चीजें हमें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। और हमारे हिंदुस्तान में और ब्राज़ील जैसे देश में सरकारें अगर ये थोड़ा सा छोटा सा कदम उठा लें तो एजुकेशन बहुत अच्छे से पहुंच सकती है हर एक जगह पे, ये मैं मानता हूँ।
ठीक, अभी अगर हम एक मिसाल ले लें इसको, आप अगर देखें तो इसराइल ने, उनका एक छोटा सा मुल्क है, उनके पास चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो बहुत, उन्होंने सरकार ने और प्राइवेट सेक्टर ने, बहुत गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर, उन्होंने बहुत डेवलप किया। आपके ख्याल में हिंदुस्तान की अगर हम मिसाल लें, वहाँ पे मुश्किल अभी क्यों है, सरकार इतना प्रोएक्टिव क्यों नहीं है, हमें क्या और काम करना पड़ेगा, और आपके ख्याल में क्या चैलेंज होता है, आप भी डील करते होंगे तो क्या चैलेंज क्या होता है?
देखिए, जहाँ तक के इसराइल की बात है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ा जो फर्क है हिंदुस्तान और इसराइल में और या ब्राज़ील या इसराइल में, वो साइज का है। इसराइल बहुत छोटी कंट्री है और छोटी कंट्री को मैनेज करना बहुत डिफरेंट हो जाता है और बड़ी कंट्री के मुताबिक। सो अगर आप अपन कंपेयर करें, इसराइल की पॉपुलेशन करीबन हिंदुस्तान के छोटे सिटी के बराबर होगी, और इसलिए वहाँ पे मैनेजमेंट बहुत डिफरेंट तरीके से होता है। अब लेकिन आपने जो ये पूछा कि उसको एक मिसाल मान के क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इसराइल मैं बहुत बार गया हूँ, मेरे बहुत दोस्त हैं, मैं इसराइली टेक्नोलॉजी को बहुत फॉलो करता हूँ, और मुझे आश्चर्य होता है कि वहाँ पे लोग, ये जो सोच है उनकी, वो सोल्यूशन सोचते कैसे हैं, मुझे अभी तक अचंभा होता है। मैं वहाँ पे 15 साल से जा रहा हूँ रेगुलरली, बहुत मित्र है मेरे, मैं सबसे यही पूछता हूँ। तो मेरी जो स्टडी है वो स्टडी ये कहती है कि वहाँ पे सबसे पहले एक परिवार में जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, उस बच्चे को किसी भी चीज के लिए ना नहीं बोलते। अगर वो कोई आइडिया लेके आया तो उसको ना नहीं कहते, उसको कहते ठीक है, इसको अचीव करने के लिए क्या करना है तुम वो भी सोच के आओ। फीड नहीं करते कि अच्छा अभी तुम ऐसा कर लो, अभी ऐसा कर लो, अभी ऐसा कर लो। हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम पहले तो आइडिया को या तो मना कर देते हैं, हो ही नहीं सकता, हार मान लेते हैं, या फिर सुझाव देने में सबसे आगे हो जाते हैं, इवन दो कि हमें उसके बारे में, उसके सोल्यूशन के बारे में हो सकता है आइडिया ना भी हो। तो इसराइल की एक मैंने बहुत खासियत देखी है, मैं अपने मित्रों से मिलता हूँ, उनकी फैमिली से मिलता हूँ, तो मैं देखता हूँ जिस तरह से वो बच्चों को प्रमोट करते हैं उनकी सोच को, वो एक बहुत बड़ा योगदान देती है वो कैसे बड़े होते हैं। तो मेरे विचार से अगर हमें भारत या ब्राज़ील जैसे देश में चेंज लाना है तो सबसे पहले ये चेंज लाना है कि हम किसी भी आइडिया को मना नहीं करेंगे। हम हर आइडिया को कैसे वो आगे बढ़ सकता है, क्या हम उसके लिए कर सकते हैं, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर या उस पूरे आइडिया को सपोर्ट करने के लिए पैसे का योगदान हो, वो कैसे इकट्ठा या कैसे उस चीज को सामने रखें जिससे आदमी दो कदम आगे बढ़ा पाए, तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत बड़ा कदम होगा हमारे देशों में टेक्नोलॉजी हो या एजुकेशन हो या कोई आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए जो काम करना है उसके योगदान के लिए।
जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, आइडिया आइडिया और उसके बाद उस पर सारा फोकस, यही सबसे अहम चीज़ है कि किस तरह आपने लोगों को इनकरेज करना है। वेल नितेश, अब हम तकरीबन अपने पहले एपिसोड के एंड की तरफ आ गए पॉडकास्ट के, हम आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे अपनी दूसरी एपिसोड में, तो थैंक यू वेरी मच, और हमारे सुनने वालों को हम इसको कंटिन्यू करते हैं अपने दूसरे एपिसोड में।
फ्यूचर हैकर लाइफ पाथ फ्यूचर।
अपोयो इंस्टीट्यूट ब्राजिलेरो डी साइंसेस एंड इनोवेशंस।